أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. بات ہو رہی تھی نہج البلاغہ کے حوالے سے, تو کل بہت سپیڈیڈلی کچھ بات چیت ہوئی, تو آج میں چاہوں گا کہ اسی کو تھوڑا سا ریپیٹ بھی کر لیں. نمبر ایک تو دیکھیں, نہج البلاغہ کے جو آخری پورشن ہے سعید رضی علیہ رحمہ نے جو مرتب کی ہے, اس میں 473 چھوٹے چھوٹے شارٹ جملے ہیں, سینگ آف امام علی آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کے. اس میں اہم بات جو ہم نے کل عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جملے جو ہے بہت سے ایک بڑے سے کلام کے درمیان سے, چاہے خطبہ تھا, خط تھا, یا جو ہے کسی خط کا جواب تھا, اس سے کاٹ کے سعید رضی علیہ رحمہ نے اس کو ایک شارٹ جملے میں ڈال کے, ایک لائن, ون اینڈ ہاف لائن, اور بعض اوقات اس سے بھی چھوٹے اس میں ڈال کے بیان کیا ہے. اسی لیے ان جملوں کی انڈرسٹینڈنگ کرنا ایک عام آدمی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. ان میں سے بہت سارے جملے ایسے ہیں, کیونکہ نہ پہلے کا حصہ ہے, نہ آخر کا حصہ ہے, نہ اس میں کوئی ڈیٹیل ہے مزید, تو انٹرپریٹ کرنا اور اس کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ امام علیہ السلام کا کلام قرآن مجید کی طرح چند جہت رکھتا ہے, ملٹی جو ہے پہلو ہیں اس کے اندر, ڈائمنشنز, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے باوجود بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلا جو جملہ مولا کا ہے کہ کن فی الفتن کا ابن اللبون لا ضحر فیرکب ولا ضرع فیحلب, یعنی فتنہ و فساد کے زمانے میں اونٹنی کے اس بچے کی طرح رہو, دو سالہ بچہ جو ہوتا ہے, جو نہ جس سے نہ دودھ دویا جا سکتا ہے, نہ اس کے اوپر وہ سواری بنائی جا سکتی ہے. یہ جملہ اصل میں مالک اشتر کے لیے ہی ایک اور خط لکھا تھا, اس مشہور خط سے ہٹ کر ایک اور خط ہے. متعدد خطوط ہیں مولا کے جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں, تمام نہج البلاغہ میں موجود ہیں. تو اس خط کے درمیان کا ایک جملہ ہے, اس جملے کو سعید رضی نے آخری پورشن میں ڈالا ہے. تو اب اس کو سمجھتے ہیں. ایک عام پرسپشن تو یہ ہے کہ جب کہیں کوئی فتنہ ہو جائے تو ہم جا کے چھپ جائیں, لا بے تعلق ہو جائیں, لا تعلق ہو جائیں, خود کو آئسولیٹ کر لیں. تو یہ تاثر ہے, یہ غلط تاثر ہے. یہ فتنے کے وقت, یعنی یہ نہیں کہ خود کو کھینچو, سائڈ پہ کر لو, چھپا کے پتلی گلی سے نکل جاؤ, نہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہ مولا نہیں فرمانا چاہتے ہیں, فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں فتنے کے وقت جو ہے نا, اپنے آپ کو استعمال ہونے نہ دو, اسپیشلی جب فتنہ کلیئر نہ ہو کہ کیوں ہو رہا ہے یہ جھگڑا, بگننگ کیا ہے, اینڈ کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, اس سائڈ پہ کون ہے, اس سائڈ پہ کون ہے, یہ میرے لیے کلیئر نہیں ہے, تو پھر بوتھ سائڈ کو آپ یہ موقع نہ دو کہ وہ آپ کو یوز کریں, یعنی آپ پر سواری کریں یا آپ سے فائدہ اٹھائیں. سواری کرنا کیا ہے, آپ کو یوز کرنا, فائدہ اٹھانا کیا ہے, وہ دودھ نکالنا. دہرن یورکپ اور یوہلپ جو کہا ہے, یہ دونوں کہا کہ آپ یوز نہیں ہو جائے, اسپیشلی جب ایک آپ کوئی مؤثر پرسنالٹی ہوں سوسائٹی میں, سوشل کسی بھی اعتبار سے آپ کا ایک اثر و رسوخ ہے یا آپ کی ایک پہچان ہے, کہ آپ کا آپ اگر کسی ایک سائٹ کی طرف ہو جاتے ہیں تو لا محالہ اس سائٹ کو سپورٹ ملتی ہے اور دوسری سائٹ کے ساتھ وہ ہوتا ہے, کیونکہ ابھی سائٹیں کلیئر نہیں ہے. حق کدھر ہے, باطل کدھر, حق و باطل کدھر ہو, تو شرعی لحاظ سے تو ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی حق اس سائٹ پہ, باطل ادھر ہے, تو حق کے ساتھ دینا ہے. ایک تو یہ آ گیا. دوسرا, ان نون واقعے کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ آپ احتیاط سے کام لے لیں. احتیاط سے کام لینا خود کو آئسولیٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ دیکھنا ہے کہ یار کدھر حق ہے, کدھر باطل ہے, کہاں غلط ہے, کہاں صحیح ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی مجھے بلاخرہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے, چاہے کوئی بھی ایسی صورتحال بنے. لیکن بعض اوقات ہو سکتے ہیں کچھ ایسے ایشوز ہوں, جیسے انڈیا میں بھی اب مصیبت کے ساتھ ہونے لگا ہے, پاکستان میں تو پہلے سے جاری تھا, یہ جو ہجوم کی جو وہ ہے, ابھی جو سری لنکن جو جس کو مار دیا تھا, بے گناہ قتل کر دیا, ان کے مجرموں کو ابھی پھانسی, بعض کو سزائے موت اور بعض کو جو ہے عمر قید کی سزا سنی. یہ کیا ہے, یہ موب لنچنگ اور یہ اس طرح کی جو کام ہو رہے ہیں, یہ ان نون فتنے ہیں, جھوٹ پر مبنی ہے, بس ماچس کی تیلی لگانا کے لیے کافی. او اس نے تو انسلٹ کیا قرآن کی, او اس نے یہ کیا, بس باقیوں نے نہیں دیکھنا ہے. واقعی کچھ ہے بیہائنڈ دا سین, کوئی ریزن ہے, نہیں ہے, अंधे पंदापन है। ऐसे फितनों में क्या करे आदमी, बिल्कुल साइड पे करे खुद को। और ये क्लियर है कि रोके, कहे भाई अगर किसी ने इन केस ऐसा काम किया है तो भी आप कौन हो जो डायरेक्ट पनिश करना चाहते हो उसको, ये आपको हक हासिल। एक एग्जांपल मैंने दिया, हाँ जी, व्हाट्सएप एक पोस्ट, फेसबुक का पोस्ट, फलान ये वो, तो बस शुरू हो गया, पूरा फीस अबिलेला निकल गए सड़कों पे, आओ देखा ना ताओ। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें होती। अब आते हैं जरा एक अगले स्टेज में, वो स्टेज ये है कि मौला अली अलैहि सलाम ने जिनाब कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई को बहुत सारी वसीयत नसीहतें की हैं, बड़ी अच्छी किस्म की, और दुआए कुमैल के अलावा भी। तो उसमें जो है एक जुमला है, नाजिब बलागा में ही है, उसमें फरमाया कि कुमैल अपने भाई की हिफाजत करना, अपने भाई की हमेशा हिफाजत करना और अपने भाई को हमेशा महफूज रखना। अब ये भाई है कौन, वो जो एक बा और माप से पैदा हुआ, नस्ली भाई की बात हो रही है या कोई और भाई की बात हो रही है? हाँ, मोमिन भाई की बात हो रही, क्योंकि ये सब बरादरी है, सही कह रहे हैं, लेकिन यहां मौला इन सब से जो असल भाई है उसकी बात कर रहे हैं। वो कौन है, फरमाते हैं अखू का दीनिका फहतफिज बिदीनिक, तुम्हारा जो भाई है जो आखिर तक रहेगा, कब्र में साथ आएगा, बरजख में होगा, सफर बरजख में, तकसीम नारी वल जहन्नम और उसमें हर जगह होगा, हमेशा तुम्हारे साथ छोड़ के नहीं जाने वाला भाई, प्रॉपर्टी के झगड़ों में तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, पैसों के झगड़ों पे, मीरास के झगड़ों पे, ये इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ये वो कौन सा भाई है, तुम्हारा दीन। मौला ने जुमला इस्तेमाल किया, अखू का दीन का तुम्हारा भाई जो कि तुम्हारा दीन है, फहतफिज लिदीनिक, अपने दीन की जो है ना आपने हिफाजत करनी है। फिर हिफाजत कैसे करें, ये भी मसलन जुमले में फरमाया ताखुदुल हाइता लिदीनिक, का अपने दीन के इर्द गिर्द बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री वाल खड़ी कर दो ताकि कोई बेगाना इसके अंदर एंट्री न कर सके। यानी अपने दीन के हाइट कहते हैं बाउंड्री को, चार दीवारी को, कह रहे हैं कि आप अपने दीन के इर्द गिर्द क्या करें, चार दीवारी बनाएं ताकि जो है महफूज हो सके। जैसे हम किसी गार्डन या किसी उसको किर्द बनाते ना, स्पेशली जहां पे फ्रूट्स वगैरह और इस तरह की चीजें हों। यानी खुलासा ये है कि फितनों के वक्त अपने ईमान और दीन की हिफाजत करो, न इस्तेमाल होने दो, न जो है किसी को तुम्हारे नाम पे तुम्हारे शोल्डर यूज करके अपने आदाफ हासिल करने की जो है कोशिश करने दो। और जब तक फितने की पहचान नहीं होती, एहतियात से काम लो, लेकिन इन द सेम टाइम फितने की पहचान करने की भी कोशिश करो, क्योंकि शरी फरीजे पर अमल करना है। भागना, छुपना, आइसोलेट हो जाना, ये हल नहीं है। समाज में फितने उठते रहते हैं, लेकिन ये जो हर फितने में आदमी कहे कि मैं ना ए के साथ हूं ना बी के साथ हूं, ये कोई हल नहीं है। ये शरीयत ने ऐसा कोई कानून नहीं दिया है, इसके लिए भी उसके पास कोई दलील और लॉजिक होनी चाहिए। क्योंकि बाज औकात हमारा खामोश रहना उस फितने को भड़काना है, उस फितने के रॉन्ग साइड को मजबूत करना है। यानी कि खामोशी हमेशा मसले का हल है, नहीं, सुकूत हमेशा मसले का हल नहीं है, खामोशी मसले का हल नहीं। कौम भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो लड़ते हैं तो लड़े, वो झगड़ते हैं झगड़ने, इस मसले में मेरी कोई राय नहीं है, मैं बिल्कुल जी वो इंग्लिश वाला कहते हैं जो न्यूट्रल हूं, मैं इस तरह का आदमी नहीं है, इस तरह का इस मानी में न्यूट्रल तो नहीं है दी। बलाखरा बाज औकात मुमकिन है कि मेरा यही जो डिसीजन है, यही जो स्टांस मैं ले रहा हूं, ये खुद बातिल को मदद कर रहा हूं, तो फिर मैं तो मौकिफ ले लिया है मैंने। ये ना कहे मैं खामोश हूं, खामोश पॉसिबिलिटी नहीं, आपकी खामोशी खुद एक आपका एक क्या है, मौकिफ है, नहीं कह सकते हैं हम लोग। बाज औकात खामोश रहना जरूरी है, बाज औकात अपना क्लियर मौकिफ देना जरूरी है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और कितना हम उस फितने को अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं। तो लिहाजा जो है हजरत मूसा से कुरान मजीद ने सूरह कसस की आयत नंबर 17 है, उसमें एक बात कोट की है, यानी ये हमारे लिए इस मसले को मौला के कलाम को मजीद गहराइयों में समझने के लिए हमें बेहतरीन वो दे रहे हैं। अजान मेरे ख्याल में अब ऑलमोस्ट हो रही है। तो फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये दुआ है असल में, रब्बी बिमा अनअमत अलैया फलन अकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन, करे परवरदिगारा आपने मुझ पर नियमतें देकर बड़े एहसानात किए हैं, अब जो है ना आपके इन एहसानात के बाद मैं कभी मुजरिमों और जालिमों का तो मददगार नहीं बनना चाहता, उनके फ्रंट पे खड़ा होना नहीं चाहता, तो लिहाजा मुझे बचा लेना कि कहें अगर ऐसी वैसी हो जाए मेरी तरफ से कि कहें फिरौन जैसे तागुतों और साम्राज्यों और इस्तकबारों और जो भी आप नाम जालिमों की मैं कहें उधर जो ना किसी तरीके से छोटी सी भी उनकी मेरी तरफ से मदद हो जाए, कहता है मुझे बचा लेना उस वक्त, क्योंकि जो है असल में मसला क्या है, अगर फर्ज करें मैं फिरौन की मदद ना करूं आज के दौर के, लेकिन उनकी लाइन में खड़ा रहूं, उनके साथ मेरी अटैचमेंट हो, उठना बैठना रहे, ये बजाते खुद उस फ्रेंड को हेल्प करना है ना, बजाते खुद उस जालिमों के टोले की मदद करनी है, मैं पार्ट ऑफ देम हूं, ठीक है उनके अमल में शामिल नहीं, मैं जुल्म नहीं कर रहा, मैं बच्चों को कत्ल नहीं करता, मैं बॉम्बिंग नहीं करता, मैंने मदर बम को अफगानिस्तान में नहीं डाला, मैंने इधर शरारत नहीं की है, लेकिन मैं शरीरों के साथ खड़ा हूं, उसके महाज में हूं, उनके लिए नरम गोशा रखता हूं, या कम से कम उनकी मजम्मत की जुरात नहीं रखता हूं, या अपने छोटे से मादी फायदे की वजह से उस तरफ खामोश होकर वो क्या कहते हैं आंखें बंद करके शुतुर दीदी ना दीदी इतना बड़ा ऊंट सामने से गुजर गया, मैं कहूं मैंने तो देखा नहीं ऊंट को, चुंटी जा रही थी लेकिन इतने बड़े ऊंट को मैंने नहीं देखा, यानी इतना बड़ा जुल्म मैं नजरअंदाज कर दूं, ये हजरत मूसा कह रहे हैं रब्बी बिमा अनअमत अलैया फलन अकूना ज़हीरन लिलमुजरिमीन, असल में ज़हीर दीन बनना है ना ज़हीर मुजरिमीन, तो ये जो है एक और है कि कोई राह है फरार नहीं है, खुलासा क्या है मौला ये फरमाना चाहते हैं, देखो जो मैं कह रहा हूं कि फितना जब हो रहा हो ऊंटनी की बच्चे की तरफ बन जाओ तो घर में छुपना हर जगह खामोश रहना अपना मौकिफ दिला देना ये मसले का हल नहीं है, तुम्हारा घर में जाके बैठ जाना भी एक मौकिफ है, बातिल को तख़वियत उससे पहुंच सकती है, यानी कोई राय फरार नहीं है, मर्दों की तरह आपने अपना मौकिफ देना है, मर्दों की तरह जज करना है फितना है क्या, सही है गलत है क्या है, फिर गलत के मुकाबले में सही की सफ में खड़े होना है इतना जितना बेकदर इम्कान है। टाइम खत्म हो गया, परवरदिगार आलम से दस बदुआ होते हैं कि परवरदिगारा ऐसे अननोन किस्म के फितनों में हमें बसीरत इनायत फरमा, दुनिया में परवरदिगारा जब तक जिंदा है हमारे शरीफ फराइज क्या है, बहुत से मसाइल उठते हैं, हादिसात वाकयात दुनिया में उठते बैठते हैं, परवरदिगारा इन हादिसात और वाकयात में हक और बातिल की पहचान और मारिफत इनायत फरमा, परवरदिगारा परवरदिगारा